विराट कृष्ण, अच्छा त्रिभुज हो गए। हम लोग कहेंगे अब आप इस रूप को हटाइए, अब हम लोग समझेंगे हाँ आप मार देंगे, अब उनको प्रसन्नता। उसी छोटे से रूप में समस्त रूप उनमें है। और उसी रूप में यावती उनका ऐश्वर्य भी है, सौंदर्य भी है, इसके अतिरिक्त जितने भी शुभ गुण हैं सब उसी के अंदर में है। क्या सुंदर गुण, उतना को मारा माने क्या, उतना को स्पर्श नहीं किया और उसको शुद्ध करके ऊपर से मालूम हुआ जे मार ये क्रीड़ा है और उसको गति प्रदान कर दी। उसी तरह से सबको ही, किसी को मारा नहीं। सुदर्शन धारण करते हैं माने क्या, सुदर्शन जो था उसको हटा दिया, सुदर्शन हो गया। जय विजय जो अभी जो देख रहा था जैसा कंस देख रहा था उसका, कंस नहीं वो शिशुपाल, और उसका वो दंत बक्र गला काट गला काटा माने क्या, उसका जो कुदर्शन था उठा हटा करके अब भगवान का सेवक बन करके अब सेवक वृत्ति देखने लग गया। कभी कभी त्रिभुज के रूप में, कभी चतुर्भुज के रूप में, द्वारका में द्विभुज भी है चतुर्भुज भी है। चतुर्भुज कैसे, जैसे कि बाणासुर का वध करने के समय में चतुर्भुज रूप धारण दिखला है। इसके अतिरिक्त और भी कभी कभी उसका वर्णन है, जब उसको मारने गए वासुदेव पौंड्रिक वासुदेव को चतुर्भुज, उसके पहले भी नहीं तो वो ऐसा क्यों कहता जी अपनी चारों भुजाओं को हटा दो और दो भुजा तुम बने, हम भी चतुर्भुज रहे। इसका मतलब ये कभी कभी वो प्रकाश करते। इसके द्वारा धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश किया, इसलिए उनका प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से भुज जुगल और भुज चतुष्टय कहने का तात्पर्य, कृष्ण ब्रज में द्विभुज के रूप में, मथुरा द्वारका में कभी कभी चतुर्भुज के रूप में उन्होंने लिया। आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च सिंधु भयो च पतितानां पावनेभ्यो आदेवी काकु हरगदगदयाद्वाच जाचे निपत्त भुवि दण्डवतोद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनम् श्यामम् के दो इंदे कृतेंदी वरम जटंजा गुडरोचि सांग बदतंग पट्टम वरस्य श्रिया बिंदारण्य निवासिनम हृदि लसद्दामा विरामोदरम राधा स्कंद निवेशितो जनभुजम ज्ञायेन्दाम भक्त्या विभिन्नाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतरितयं नाम तवैवास्मि तवैवास्मि नतया इति विज्ञाय राधे तन्मयमा। तन्वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वयं दुर्भिरसन्न धर्मन त्रिचर ब्रिज नग्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रज कुर्वनितानं वर्धयन काम देवन।
यह श्लोक, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने समस्त श्रीमद्भागवत को सूत्र रूप से वर्णन किया और उसी के रूप में परीक्षित महाराज जी मैया अपनी मैया को यह हरि कथा सुनाते हुए उपसंहार कर रहे हैं और सारी भागवत की प्रारंभ से लेकर अंत तक जितना प्रसंग है सब इसमें आया है। जैत जन्निवासों के द्वारा अपने जन्म से पूर्व उनका स्मरण होया और देवकी जन्मवादों से देवकी का जन्म प्रसिद्ध है, इस अर्थ में उनका जन्म और जदुबर परिषद स्वरी दुरुभि रसन धर्मम, इसके द्वारा मथुरा में और द्वारका में विवाह से लेकर के उनका और जितने असुरों का संहार किया और धर्म की प्रतिष्ठा की अपने भुजाओं के बल से, माने भीम अर्जुन इत्यादि के भुजाओं के बल से सबको मारा और धर्म की प्रतिष्ठा की। जदुबर परिषद अर्थात इंद्र को भी, देवताओं को भी पराजित किया, ब्रह्मा को पराजित इत्यादि किया और सुधर्मा सभा और पारिजात जो स्वर्ग के विभूषण हैं उनको भी द्वारकापुरी में लाकर उग्रसेन जी को दिया। इसलिए महा ऐश्वर्य विराट लीला का प्रकाश किया और फिर स्थिरचर ब्रज नग्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम के। अब इसके द्वारा ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं इनका स्मरण कराया। श्री मुखेन ब्रजपुन वनिता नाम वर्धयन कामदेव, इस रूप में आज हम लोग इसकी व्याख्या सुनेंगे विशेष रूप से। स्वयं दो, दो माने भुजाएं, अपनी भुजाओं के द्वारा अर्थात पांडव अर्जुन और भीम इत्यादि के द्वारा असुरों का संहार कर और धर्म को दूर कर धर्म की प्रतिष्ठा उन्होंने की। यहाँ पर सहायक रूप में स्वयं शब्द का प्रयोग किया है अर्थात अपनी भुजाओं के द्वारा। जदु बाहुतुल्य क्षत्रिय क्षत्रियत्व के द्वारा पाप का जो मूलभूत पाप करने वाले दुष्टों का संहार किया लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध में भारतवर्ष की जितनी विद्याएं थी वो समाप्त हो गई। धनुष बाण चलाना उसमें ब्रह्म विद्या इत्यादि का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र इत्यादि चलाते थे वो सब समाप्त हो गया, किंतु ये सब आसुरिक शक्तियां हैं इनको समूलित ध्वंस कर दिया और यहाँ तक कि अपने कुल में भी जो इसको जानने वाले थे उनको भी दूर किया, उनको भी फल बल से समाप्त करके और कांटे से कांटे निकल करके निकाल कर उस कांटे को भी फेंक दिया जिसके द्वारा वो कांटा निकला था। अर्थात इन अधर्मकारियों को तो निकाल करके फेंका ही। पांडवों के पक्ष में जितने लोग थे, द्रुपद के पुत्र इत्यादि सब, अभिमन्यु भी थे और सब लोग, पांच पांडवों को छोड़ करके बाकी सबका, और ये पांच पांडव भी अंत में ये सब छोड़ छाड़ करके चले गए। इस तरह से इधर से ये कांटा के कांटा निकाल करके कांटा फेंका और उधर अपने वंश में रहने वाले सब लोगों को कांटा से कांटा निकाल करके महाभारत युद्ध करा करके सब लोगों को मिटा करके और तब फिर वो खुद चले गए, अब काम नहीं है। तो ये भारतवर्ष का तो विनाश तो हो गया नहीं, भक्ति को के लिए उन्होंने ऐसा किया, भक्ति की प्रतिष्ठा की, ऐसे धर्मों को छोड़ करके तामसिक और राजसिक सर्वधर्मान प्रत्यज्यम आम एकम शरणम ब्रज, इसकी उन्होंने प्रतिष्ठा की। आत्मधर्म वो लोग क्षत्रिय लोग अहंकार भी विगुण होकर के आत्मा अजर अमर है इस चीज को भूल रहे थे। आत्मा अजर अमर है, वो भगवान का नित्य दास है, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास होता है, वो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करने वाला हूँ, जितने भी थे लोग सब। इसलिए सब लोगों को विज्ञान भी बहुत उन्नति पर था, बहुत उन्नति पर, किंतु वो जड़ विज्ञान, इसलिए इसको भी हटाया और वहीं से आरंभ किया भक्ति का। नहीं तो भक्ति लोग नहीं करते, यदि वैसी विद्याएं आजकल होती ना तो न जाने क्या होता। इससे भी अधिक था उन्नति, मन से सब कुछ होता था, अस्त्र शस्त्र धरने की बम चलाने की जरूरत नहीं, सबको समाप्त कर दिया। भगवान सब कामों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं किंतु आदमी समझता नहीं, विशेष करके जड़ बुद्धि वाले इस चीज को नहीं समझ पाते। यद्यपि वो स्वयं इन सब का वध कर सकते थे इच्छा करने से, इच्छा मात्र से ही हो जाता, किंतु उनकी लीलाएं नहीं होती और भविष्यत में उन लीलाओं को श्रवण करके भव सागर से पार कर जाते, ये भी चीज नहीं। अभी हम लोग साधन भजन करें न करें किंतु उनकी लीला कथाओं को जो सुन रहे ये भी भक्ति है, और सुन करके इसका जो प्रभाव है ये दूर नहीं होगा, ये बीज है। बीज ये कब नष्ट होगा? यदि अपराध हो तो, अन्यथा अपराध नहीं हो, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति, तीर्थ के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध न हो तो ये नष्ट नहीं होगा। साधारण भोगों में फंस जाने से अथवा बीच में मृत्यु हो जाने से अथवा अन्य कारणों से ये दूर नहीं होता, ये दूर होगा तभी यदि द्वेषमूलक भाव से गुरु, वैष्णव, भागवत, भगवान, भक्ति की निंदा करें, तब तो ये नष्ट हो जाए, अन्यथा ये नष्ट नहीं होगा। जैसे इसका होना भी बड़ा दुर्लभ है, इसका नष्ट होना भी बड़ा कठिन है, नष्ट नहीं होता, नष्ट उसी स्थिति में होगा, इसलिए बचने की चेष्टा करनी चाहिए। तो भगवान तो इच्छा मात्र से ही कर देते इनका वध, किंतु लीलाएं नहीं होती, और लीलाएं नहीं होती तो प्रभु कृपालु हैं, उदार हैं, ये सब समझ में नहीं आता। इस तरह से भक्ति नहीं होती, हम लोगों का भव सागर से पार करने का कोई उपाय ही नहीं होता, तभी भक्त वात्सल्य के द्वारा अपने जस को जो भगवान को प्राप्त करा देता है ऐसे जस को सब जगत में प्रचार कराया। इसीलिए उनको उद्धव जी को नहीं ले गए, उद्धव जी को ले जाते और सुखदेव गोस्वामी को नहीं ले गए अपने साथ में, इसीलिए सुखदेव को ले जाते तो भागवत चली जाती, और कृष्ण के बाद ही उद्धव जी चले जाते तो उस समय में ये सब का कुछ अवशेष ही नहीं रहता, सभी कुछ समाप्त हो जाता। भगवान की कृपा समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए इसके द्वारा परम भक्त वात्सल्य महिमा भगवान की सूचित हुई। मधुपुरी पुरी ब्रजपुर वनितानंग वर्धयन कामम, मधुपुरी द्वारावित दारावती की लीला का वर्णन करके पहले अतः भी ब्रजपुर वनितानंग ब्रज में अब आ रहे हैं। यहाँ होने पर भी पूर्व उद्दिष्ट स्तुति के क्रम से नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कल हमने बतलाया था ऊपर से नीचे नहीं आकर के नीचे से, हम लोग नीचे हैं साधक हैं, इसलिए साधकों के लिए पहले द्वारका लीला मथुरा लीला, इसके बाद में जैसे गोप कुमार जी जिस क्रम से वहाँ पर भगवान तक वृंदावन तक पहुँचे थे उस क्रम के अनुसार में ये स्तव कर रहे हैं। जयति जयति उत्कर्ष के साथ में विराजमान हैं ना, हैं अभी भी लीलाएं हो रही हैं, इसलिए द्वारका की लीला भी मथुरा की लीला भी और वृंदावन की लीलाएं अभी भी नित्य चल रही हैं। श्रीमद् भागवत में भी बृहद भगवतामृत भी इस सिद्धांत का पोषण किया है। जब जीवात्मा अमर है हम ही लोग नहीं मरने वाले हैं तो उनकी नित्य लीलाएं कैसे अनित्य हो जाएंगी। इसके द्वारा ये भी दिखला रहे हैं कि द्वारका और मथुरा लीला की अपेक्षा वृंदावन की लीला और भी श्रेष्ठ है, इसलिए कह रहे हैं स्त्री चर ब्रज नग्न सुस्मितसी मुखेन ब्रज पुरवनितानं वर्धयन कामदेव। ब्रजपुर बनितानं, यशोदा कहाँ की बनिता है, यहीं से जन्म से ही आरंभ करो वात्सल्य इत्यादि भाव। जितनी माताएं हैं जिनके बच्चे होकर के एक वर्ष रहे वो भी तो माताएं ही हैं, जिनके लड़के वो लोग हैं और सब ये भी धन्य है, यहाँ तक कि गायें भी धन्य हैं। किंतु विशेष करके वर्धयन कामदेव के द्वारा वो श्रीमती राधिका इत्यादि गोपीजनों के लिए विशेष करके ये बतला रहे हैं, ये चीज दूसरों में नहीं है। यहाँ पर स्थिरचर ब्रिजी नग्न कृष्ण शब्द जिस समय में प्रकट हुए उस समय में ब्रजपुर द्वारकापुर और मथुरापुर इनकी तो बात तो छोड़ो, उस समय जगत में भी जहाँ वो गए वहाँ सबके स्थिर और चर प्राणियों के ब्रिजी माने दुख, दुख माने संसार दुख, आवागमन दुख इत्यादि सभी, यहाँ तक कि विरह तक भी सब दुखों को नाश कर दिया। विशेष करके ब्रज में स्थिर जंगम माने क्या, जितने घास इत्यादि हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं ये, और साथ साथ में चलने वाले कृमि कीट कोयल सूप मयूर जितने भी पशु पक्षी जल में चलने वाले बाहर में चलने वाले सब लोगों को संसार दुख के अतिरिक्त, संसार दुख किसको, जो बद्ध जीव हैं और जो साधारण भक्त हैं उनको प्रेम देकर, और जो प्रेमी भक्त हैं उनको वस्तु सिद्धि देकर, वस्तु सिद्धि जिनकी है उनको लीला में प्रवेश करा करके, जिनको लीला में प्रवेश है उनको और उत्तरोत्तर वो जो भाव हैं स्नेह मान प्रणय ये सब देकर सबका दुख उन्होंने दूर किया। प्रेम भक्ति प्रदान के द्वारा अर्थात महा औदार्य लीला प्रकाश किया कृष्ण ने। औदार्य लीला कैसे, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, मथुरा वृंदावन में इतना प्रेम रहने पर भी मथुरा आए, मथुरा में भी प्यार प्रेम रहने पर समस्त मथुरापुरी को लेकर के द्वारकापुरी में चले गए, और वहाँ से हस्तिनापुर इत्यादि पांडवों के अवकर्मों के युद्ध में जितने लोग भी मरे उस युद्ध में कृष्ण को देख करके मरे, या अर्जुन के बाणों से मरे, भीम की गदा से मरे, जिन जिन लोगों ने कृष्ण को दर्शन किया चाहे शत्रु रूप में किया और चाहे अपने पक्ष के रूप में दिया दर्शन, सबकी अंततः मुक्ति जरूर हुई। और भी मुक्ति कैसी? सलोक या सारूप्य सायुज्य नहीं उनको दे दिया। और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको प्रेमा भक्ति भी मिली होगी। नहीं असुर नहीं, अब जैसे पांडवों के पक्ष में जितने थे वो लोग भक्त थे, भीष्म पितामह भक्त थे, द्रोणाचार्य भी भक्त ही थे, किंतु उनका पक्ष, उनकी क्या गति हुई? भीष्म पितामह की क्या गति? ऐश्वर्यमयी भक्ति उनकी तो स्वभाव थे, उनको हो सकता है कि वो प्रेमय भक्ति, क्योंकि उनकी लालसा कुछ ऐसी देखी गई। ऐसे बहुत से लोग थे जो कौरवों के पक्ष में थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनकी भगवत भक्ति थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज शल्य थे ना, वो नकुल सहदेव के अपने खास मामा थे, वो आ रहे थे युद्ध करने के लिए पांडवों के पक्ष में, किंतु किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, कोई निमंत्रण अभी नहीं मिला था, किंतु सुना ये युद्ध हो रहा था इसलिए हम चलें अपने भांजे की तरफ से युद्ध करेंगे। जब दिल्ली के कहीं किनारे निकट में आए तो दुर्योधन को पता लगा, जैसे वो आ रहे हैं बड़े सीधे साधे हैं, बस आगे पहुंच गया और पहुंच करके उनके खेमे एकदम तैयार कर दिए, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करके उनके चरणों में लिपट गया है, मामा मामा मा। क्यों हमारे पास आया? तो इसलिए कि युद्ध होगा तो आप हमारे तरफ से रहेंगे, हमने आपसे पहले निवेदन किया। कहे ठीक है, बस उनके तरफ से हो गया। किंतु अपने भांजे पर कुछ प्रीति रही होगी कि नहीं रही? तभी तो ऐसे बहुत से लोग थे जो भक्त हैं। जैसे कर्ण का पुत्र था विकर्ण, वो जब युद्ध हो रहा था तो उस समय में, किस समय में उनको बड़ा डांटा था, जब अभिमन्यु को लोग मार रहे हैं या और कोई प्रसंग में, तो वो पांडवों का पक्ष लेकर के कह रहा है जैसे अभी भी संधि कर लेने का समय है, अभी आप लोग जाकर के उसे संधि कीजिए, वो लोग धर्म पथ में हैं, आप लोग अधर्म पथ में हैं। स्पष्ट रूप से कहा आपका ये अन्याय हो रहा है, ये लोग न्याय के अनुसार मिल रहे हैं। तो उसमें कर्ण बिगड़ गया, तुम हमसे भी तेज हो गया, हमसे भी अधिक जानने वाला, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से भी तुम अधिक विद्वान हो गया, वो क्या कुछ नहीं जानते हैं, तुम ही सब कुछ जानता है, उसको चुप कर दिया। वो भी युद्ध में मारा गया, किंतु मारा उसकी क्या गति होगी? उनका हो गया। इसी तरह से उनकी ये सायुज जो इत्यादि मुक्ति नहीं होगी। अभिमन्यु गए या पांडवों के पक्ष में जो लड़े हैं, पांडवों के लिए मरे हैं, उनकी क्या गति होगी? उनको भी भक्ति होगी। पांडवों का जिस प्रकार से तन से मन से वचन से आश्रय लिया, उन सब की इसलिए भगवान का आगमन होता है। यहाँ पर वृंदावन में ब्रजपुर वनितानांग वर्धयन काम के ऊपर स्थिरचार ब्रिजी नग्न के द्वारा कीट पतंग इत्यादि जितने भी हैं उन सब के लिए किसी हेतु की प्रतीक्षा किए बिना सबके संसार दुख को बिना हेतु के दूर कर, यह प्रकट लीला की कुछ विशेषता है। नाशपूर्वक अपनी प्रेम भक्ति प्रदान किया और प्रेम भक्ति के द्वारा उनका संसार भी वह जो दुख था उनको दूर किया। प्रेम भक्ति का यहाँ पर भी दिया है जो पहले दिए दे करके और उनको दुख को दूर किया, जैसे उसमें बतलाया है विक्रीडितं ब्रजवधूभिः दंच विष्णु सद्धान्वितो अनुसृणीयात् अथ वर्णयेत् यः भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य काम। यहाँ पर प्रतिलभ्य काम का अर्थ क्या बतलाया था, याद है सब? वो पहले प्रतिलभ्य पहले लाभ किया, क्या कामानुगा भक्ति, काम माने यहाँ पर अभिलाषा रखो, प्रेमा भक्ति इस काम को लाभ करके और फिर जो हृदय रोग का जो काम है उसको इसी तरह से भक्ति के द्वारा ये संसार दुख नाश होगा, अनर्थ दूर होगा। अनर्थ दूर करके तब फिर भक्ति करेंगे, हरिनाम करेंगे, भाई ये नहीं होगा। हरिनाम करते करते चित्त शुद्ध होता जाएगा और अनर्थ दूर होते जाएंगे और भक्ति बढ़ती चली जाएगी। पहले ये सब दूर कर लेंगे तब ये संभव पर नहीं है। इसलिए जो जिस अवस्था में है वहीं से निष्कपट होकर के भगवत भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की कथा को, भगवान का नाम को जैसे भगवान समझते हैं, नाम और नामी अभिन्न, इस तरह से भगवान की कथा को भी, कथा को भी क्या समझो, ये कथा भगवान से अभिन्न है ऐसा समझो। आजकल हमारे ठाकुर जी का पहले मोर मुकुट था ना, और राधा जी के तरफ में झुका रहता था, तो उनका शायद गिर गया जल्दी में, कृष्ण भागते हुए उन्होंने खोस लिया, अब ये दाहिने तरफ में झुक रहा है। हमने देखा जैसे ये भी इनकी अपूर्व लीला है, जब दाहिने तरफ में लेकर के अब चलते हैं, अब बाएं तरफ में बहुत दिन, दाहिने तरफ अजय रोज रोज हम बाएं तरफ में क्यों झुके, दाहिने ही रहना अच्छा है, बीच में हम रहेंगे ऊपर सीधे। कभी कभी अपने आभूषण इत्यादि उल्टे भी धारण कर। कहाँ क्या है और भी एक बतला रहे हैं, कृष्ण ने कर्मियों के कर्म, पापियों के पाप, दुष्कृतियों की दुष्कृति को विनाश कर किया, उनके सत्कर्म क्या हैं, भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, प्रतिकूल है, कर्म मात्र है, कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भाण्ड अमृत बोलिया जेवा खाए। कर्मकांड माने क्या कहते हैं, कर्मकांड माने क्या, अच्छे जो सदाचार रूप कर्म जो कांड है, यहाँ पर ये होगा सदाचार रूप ये जो कर्मकांड है, और ज्ञान कांड माने सभी ब्रह्म हैं, तो ये दोनों कांड ये विष हैं, भगवान इनको दूर करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कर्मकांडी हरिश्चंद्र जी का ये लौकिक सत्य छुड़ा दिया, उनके बेटे मर गए, स्त्री स्त्री कहाँ, एक डोम के यहाँ बीची ना किसके यहाँ, डोम के यहाँ खुद हरिश्चंद्र को बेचवाया, और इन स्त्री को एक निष्ठुर ब्राह्मण के यहाँ, रोहिताश्व को भी उसी के यहाँ बेचवाया, तभी इनकी ममता नहीं गई। मैं राजा हूँ हरिश्चंद्र, मैं इनका पिता हूँ, इनका पति हूँ, ये भी नहीं गया। अंत में उनके लड़के को सांप बन करके काट करके उनको भी खत्म कराया। उस समय में फिर जबकि वो उनका संस्कार होने वाला था, बिजली चमकी और उन्होंने देखा ये मरा हुआ रोहिताश्व है और लाने वाली हमारी पत्नी है, उस समय क्या स्थिति होगी। तो अभी बड़ी कह रहे हैं जैसे ये हमारा सत्य है, पहले मैं लूंगा शुल्क श्मशान घाट का, तब यहाँ पर संस्कार करने दूंगा, अन्यथा नहीं। ये उनका सत्य है ना, क्या सत्य है, शरीर सत्य है न, क्या सत्य है, बड़ी निष्ठा दिखला रहे हैं। मैं हमारी स्त्री होने पर भी अब मैं अपने मालिक के प्रति निष्ठावान हूँ, इसलिए उसे शुल्क लूंगा, हमारा जो संबंध था अब ये नहीं रहा, मैं कितना बड़ा भारी धर्मात्मा हूँ, ये अभी उन्होंने क्या किया, ये भी गलत है। साधारण रूप में और सब छुड़ाना, बुराई से किसी को सब हटा करके अच्छी तरह में भलाई में लाना, ये तो ठीक है,
किंतु उससे भी अधिक ठीक है क्या, उसको सत्कर्मों से भी हटाकर और भगवत भक्ति में प्रतिष्ठित करा देना, ये बड़ी भारी दया है। इस चीज को जगत में समझने वाले बहुत विरले हैं, बहुत विरले हैं। समझ नहीं सब, जितना भी समझाएंगे नहीं समझेगा वो। ये समझेगा कब, जब भगवान की कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो, तो उनको सत्कर्म से हटा करके, लौकिक सत्य से हटा करके परमार्थिक सत्य में ले आए। तुमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, इसका मूल्य क्या है, कुछ भी नहीं है इसका। तब फिर वहां पर विष्णु भी आए, धर्म भी आए, सब लोगों ने विचार करके उनको फिर भगवत दर्शन का जो फल था और भक्ति का फल दे करके उनको वैकुंठ मिले गए, और उनके पुत्र को राज्य का चक्रवर्ती राजा बना दिया, और वो परम भक्त धर्मात्मा होकर के रहे। हरिश्चंद्र की कथाओं को बहुत से लोग सुनते हैं किंतु इसको धारण नहीं कर पाते, नहीं धारण कर पाते। उसी प्रकार से जैसे कि कर्म मार्ग में सत्कर्म भक्ति का बाधक है अथवा मोक्ष के लिए ये घातक है। सत्कर्म करने से क्या होगा, मोक्ष होगा, उसके फल को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा आवागमन। जैसे एक व्यक्ति ने अपने माता पिता का की बहुत सेवा की सारे जीवन, अच्छा तो उसका फल क्या होगा, ये जो सेवा की उसका फल, सुंदर जो फल है उसको भोगेगा कि नहीं भोगेगा। यदि कम है तो इस जगत में आकर के उसका फल भोगेगा, और नहीं तो पितृलोक में जाकर के उसका फल भोगेगा यदि यहां पर नहीं भोगने योग्य हुआ। तो ये आवागमन नहीं रुका, फिर आवागमन के चक्कर में पड़े रह गए बस। इसलिए भक्ति, ये सत्कर्म जो हैं, ये ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए बाधक हैं, ऐसे मोक्ष भी भक्ति के लिए बाधक है। इसी प्रकार से इसको दुखी समझो, किसको, मोक्ष को भक्ति के लिए। कौन सा मोक्ष, कोई भी मोक्ष, कोई भी मोक्ष। भक्ति रहित जो, सेवा रहित जो मोक्ष है, वो सभी चाहे सारूप्य हो, चाहे सालोक्य हो, सृष्टि हो, चाहे कोई भी हो, किंतु साइज्य वाला भगवान में एकदम मिल जाएंगे, ये तो भक्ति का घोर विरोधी है। उसमें थोड़ा थोड़ा चल सकता है, भगवान जैसा रूप लेकर के जय विजय द्वारपाल बांध करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किंतु ब्रज में आकर के या अयोध्या में या द्वारका में कोई सेवा उनको मिलेगी, वो नहीं। इसलिए किसी प्रकार का मोक्ष ठीक नहीं। कहते हैं दियमानम अपिनो ग्रहणंती, बस उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। हमारे वृत्तासुर जी ने भी ऐसा ही कहा, न नाक पृष्ठम न चपा रमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवंगवा, और अपुनर्भव माने मोक्ष को भी नहीं चाहते, ये भक्ति के लिए बाधक। इसलिए कृष्ण ने स्थिरचर लोगों का जो ये दुख है, ये ज्ञान का भी दुख है, मोक्ष का भी दुख है, इसको भी दूर कर दिया। उतना को ये मोक्ष नहीं दिया, क्या दिया, धातु उचित गति। इसलिए निजजन किसको कहा, एक जिन्होंने भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण किया है साधक रूप में, ये निजजन। अभी हम लोगों ने भी जो जो निष्कपट रूप में भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण किया है, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण किया है, वो भगवान के जन बन गए हैं। किंतु सच में होना चाहिए, बनावटी नहीं। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो जिनको निष्ठा है, इनसे भी श्रेष्ठ आसक्ति वाले, इनसे भी श्रेष्ठ भाव वाले, उनसे भी श्रेष्ठ प्रेम वाले हैं। जितना स्तर बढ़ता जाता है कृष्ण के, वो निजजन होते जाते हैं। भीष्म पितामह जी कृष्ण के निजजन हैं, किंतु अर्जुन जैसे हैं, अर्जुन जैसे हैं। इसलिए वृंदावन के लोगों के लिए स्थिरचर ब्रज नग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रज पर वनितानां,
ब्रजपुर में रहने वाले वनिताओं की तो बात छोड़ दो, स्थिर और जंगम है, उनको क्या दुख है? उनका जन्म मरण है कि नहीं है?
नहीं।
उनका जन्म मरण तो उनके लिए उनका दुख क्या है? आज कृष्ण इस तरफ में गोचारण करने के लिए नहीं आए, आज उनके श्री चरण कमल हमारे सिर पर नहीं पड़े, इसका दुख है, विरह का दुख है उन लोगों को। तो इसको भी अपनी लीलाओं के द्वारा आकर के इस सबको दूर कर दिया। जब एक तृण लता गुल्म का ये दुख करने में परम उदार हैं, तो जो जीव उनके शरणागत हो जाएगा और उनकी कृपा चाहेगा तो वो नहीं करेंगे। बस हम जो कुछ कमी है हम लोगों के तरफ, विशेष करके ये इनके गोप कुमार के लीला चरित्र से ये देखा जाता है, अहेतुकी उदार और करुणापूर्ण है। इसने भगवान को नहीं चाहा कहीं, इसने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया जो गोवर्धन में इसका जन्म हो जाए, गोवर्धन में जन्म दिया और एक ऐसे महात्मा से भेंट करा दिया जो महात्मा खुद बने हुए कृष्ण हैं, उनसे भेंट करा दिया और किस प्रकार से उसकी रक्षा करके बीच बीच में दर्शन दे करके और उसको लेते चले जा रहे हैं और अंत में ले गए। इसलिए ये कृष्ण की करुणा है। इसलिए हम लोग अनर्थों से यदि बच करके संबंध ज्ञान के सहित में हरिनाम करें और जहाँ तक हो सके निष्कपट होने की चेष्टा करें, तो कृष्ण की कृपा तो है ही है, उनकी कृपा कोई दूर खोजने की नहीं, बस उनकी कृपा को हम पकड़ सकते हैं, बस यही है। यद्यपि उस समय लीला के प्रकट काल में सर्वत्र ही उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रचार किया, जैसे वो गए विदेहराज में, वहां पर दो भक्त उनके हैं, एक हैं महाराज जनक बहुलाश्व और एक भक्त हैं
श्रुतदेव और बहुलाश्व।
श्रुतदेव, श्रुतदेव ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं किंतु भक्त हैं, और उधर महाराज जनक की पीढ़ी में बहुलाश्व राजा हैं। ये त्रेताजी की बात है, वो जनक नहीं जो उस समय सीता जी के पिता, इसके बाद में दोनों भी परम भक्त हैं। कृष्ण बिना हेतु के सब लोगों को लेकर के कितने ऋषि महर्षि उनके साथ में गए, हजारों, उसमें सुखदेव गोस्वामी भी हैं या ये व्यास इत्यादि, नारद और बड़े बड़े सब ऋषि हैं। सुखदेव का नाम शायद है कि नहीं, किंतु गौतम विश्वामित्र वशिष्ठ हारित इत्यादि ये सब बड़े बड़े लोग भक्त, गौतम पराशर ये सब नारद जी हैं, सबके साथ में गए। बाहर बगीचे में ठहर गए, सोचा जी कहाँ जाऊँ पहले, तो वहीं से उन्होंने दल को दो विभाग में विभक्त किया। कैसे विभक्त किया? खुद और जितने भी वहाँ पर उनके साथ में ऋषि महर्षि थे उन सबको लेकर के राजा के पास में गए, और फिर जितने थे वहाँ वो लोग सभी सबको लेकर के वहाँ पर भी गए, दोनों एक साथ में ऋषि महर्षियों के साथ में दो स्वरूपों में बैठ करके वहाँ और वहाँ गए। ऐश्वर्यमय लीला प्रकाश की और उनको अपने उपदेश दिए, जिन उपदेशों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति का उपदेश दिया। कुछ दिन रहे उनकी कहने से, कुछ दिन रह करके और उनको उपदेश दे करके भक्ति मान कर करके प्रेमा भक्ति दे करके और फिर वहाँ से आए। उसी तरह से कृष्ण यदि मध्य प्रदेश में उज्जैनी में गए होंगे अपने गुरु के यहाँ, तो क्या हुआ होगा? थिरचार ब्रिजी, उसी तरह से हस्तिनापुर में गए ब्रिज पर क्या ब्रिज वहाँ पर भी, भारतवर्ष में कहाँ नहीं गए? उनकी जितनी स्त्रियाँ थीं वो प्राय दक्षिण या पश्चिम की थीं, जैसे माद्री, माद्री कहाँ की थी? मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर गए होंगे, तो वहाँ पर उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा कुछ की है, माद्री का विवाह ऐसा होने पर भी हम उसके साथ में करेंगे, माद्रीनारायण नहीं, वहाँ पर दूसरी कोई थी उनकी स्त्री, वहाँ पर गए, जैसे साढ़ों का न था उसका, कौन सी थी, नग्नजीती, उधर देश की, तो वहाँ पर गए होंगे विवाह करने के समय में, विदर्भ राज में गए, द्वारका कहाँ, गुजरात में, और गए कहाँ विवाह करने के लिए, एकदम नीचे मध्य प्रदेश में, कहाँ वो कौन सा, विदर्भ में, विदर्भ माने मध्य प्रदेश के नीचे में पड़ता है, वहाँ पर गए। अच्छा, युद्ध करने के लिए कृष्ण कहाँ कहाँ कर गए, अर्जुन के साथ में, पांडवों को राजसूय यज्ञ करने के पहले गए ना, बंगाल में गए ना, भीम को कुछ गर्व भी था, उनका गर्व उतार दिया और उनसे उनको हरवा करके नवदीप धाम में लेकर के, अच्छे देखो वहां पर पहुंच गए। आसाम देश में गए कि नहीं, किस लिए गए, भगदत्त नहीं, नरकासुर को मारने के लिए, और गए अकेले नहीं, अपनी जामवंती के साथ में गए, सत्यभामा जी को, सत्यभामा को लेकर के वहां गए और उसको मार करके और सहदेव जी को गद्दी पर बैठाया और सब लोगों को वहां की जितनी राजकुमारियां थी सबसे शादी की और सब लेकर के, इसलिए भारतवर्ष में उसमें कहां नहीं गए, सब अपने गए। इसलिए स्त्री चार ब्रिजी नग्ना विशेष कर कभी यहां पर बतला रहे हैं, ब्रजपुर जो सुंदरियां हैं इनकी भी सबसे अधिक श्रेष्ठता बतलाते हुए कह रहे हैं। ब्रजपुर वनिता नाम, यहां पर ब्रजपुर वनिताओं के हृदय में काम वर्धन, काम के अधिष्ठात्री देवता यहां पर कृष्ण है, साधारण लोगों के हृदय में काम के अधिष्ठात्री देवता कामदेव है, कौन कामदेव, रति और कामदेव, वो कामदेव हैं यहाँ पर, किंतु समस्त कामदेवों के भी कामदेव हैं कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, और उनके भी मूल हैं ये कृष्ण। उनके हृदय में वर्धनशील जो कामदेव, वो काम और कामदेव जो कृष्ण दोनों एक हैं, वर्धयन कृष्ण भी, यदि कामदेव हैं तो वो बढ़ेंगे कैसे, वो तो नित्य स्वरूप है, तो नहीं, गोपियों के काम के अनुसार में, उनकी भावों के अनुसार में कृष्ण भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वर्धयन कामदेव, कृष्ण को भी बढ़ा रही हैं, जो ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा माने ब्रह्मयति, जो दूसरों को बढ़ाते हैं अपने भी बढ़ते हैं, उनका नाम है ब्रह्मा, किंतु यहाँ पर गोपियां ही उस पर ब्रह्म को अपने भावों के अनुसार में वर्धयन कामदेव, कृष्ण को भी वर्धन, कृष्ण को भी वर्धन कर रही हैं। अच्छा, यहां गोपियों के हृदय में जड़ीय कोई काम नहीं, कृष्ण स्फूर्ति में वैसा अप्राकृत प्रेम का भाव, यहां पर काम से समझो, इसलिए कृष्ण के हृदय में भी काम को उद्दीपन करती हैं ये गोपियां। जैसे उसमें वेणुगीत का अंतिम अंतिम श्लोक, पूर्णा पुलिंद नहीं 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 गोपी गीत में तत्ते सुजात, उस श्लोक में है, सुस्मित श्रीमुखेन वेणुवादन अधरों पर धारण किए हुए और स्मित हास्य से देख रहे हैं, जैसे कि श्रीमद्भागवत के गोपी पूर्वराग में वेणुगीत के छठवां या सातवें श्लोक में बतलाया गया। अखनतांग फलमिदम। यहाँ पर वर्धयन कामदेव में कामदेव का तात्पर्य क्या, अर्थ क्या है काम माने, कामदेव माने बतला रहे हैं कामान स्व अभिलाषान दिव्यति प्रकाश प्राकाशयति, उनको कहते हैं कामदेव, अपने अभिलाषाओं को कामों को जो दिव्यति प्रकाश करते हैं उनको। यहाँ पर कृष्ण अपने अभिलाष को दिव्यति प्रकाश कर रहे हैं और गोपियां उनको पूर्ण कर, इसलिए वो कामदेव हैं। अथवा कामदेव कहने से कामा जद्वा कामेन स्वाभिलाषेन दिव्यति क्रीड़ति जस सह कामदेव, जो निजा आनंद में विभोर रह करके स्वेच्छा मत क्रीड़ा करते हैं उनको कहते हैं कामदेव। इसलिए गोपियों का काम अर्थात प्रेम वर्धन करते हैं और खुद भी वर्धित होते हैं, वो हैं कामदेव। इसलिए जो काम संसार में घोर सबका शत्रु है और सबको नरक में ले जाने वाला जो काम है, और वही काम गोपियों में आने पर सबसे श्रेष्ठ कोटि का बन जाता है।